ਸਾਲੀ ਕੁਛ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੀੜ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਲਿਆਏ, 400 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ 50-60 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਲਿਖਤੀ ਸੰਗੀਤ ਥਿਊਰੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੋ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰੀ ਉਹ ਹੁਣ 50-60 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਈ ਹੈ ਬਸ। ਔਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹਨ, ਮੈਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਅਭਿਆਸ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਇੱਧਰ, ਪਰ 3 ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ, ਉਰਦੂ, ਹਿੰਦੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਗ੍ਰੰਥ ਹਨ ਉਹ ਬਹੁਤੇ ਉਰਦੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਤੋ ਇੱਕ ਪੰਡਿਤ ਫਰਾਮ ਜੀ ਹੋਏ ਨੇ ਪੂਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਔਰ ਉਹ ਪਾਰਸੀ ਸਨ, ਔਰ ਪਾਰਸੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵਪਾਰੀ ਔਰ ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਦਿਮਾਗਦਾਰ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਕੌਮ ਉਹ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਬੜੇ ਮਹਾਨ ਆਦਮੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਪੂੰਜੀਦਾਰ, ਠੇਕੇਦਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਇਸਨੇ ਲਗਭਗ 30 ਸੰਗੀਤ ਲਿਖੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜੋ ਹੁਣ ਮਿਲਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕੁਛ ਥਿਊਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਲਿਖਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੂਰਛਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰਿਤ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸੰਗੀਤ ਛਪ ਰਹੇ ਹੈ ਬਹੁਤੇ ਲਗਭਗ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਉਹ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਿਗੰਬਰ ਪਟਵਰਧਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੇਲਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਪੁਲਸ਼ਕਰ ਦਾ, ਔਰ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨਾਰਾਇਣ ਭਾਤਖੰਡੇ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਔਰ ਥਿਊਰੀ ਵੀ। ਉਹ ਇਤਨਾ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸੁਰਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਤਖੰਡੇ ਕੇ ਜੋ ਨੇਮ ਹੈ 10-8 ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ। ਔਰ ਕੇਦਾਰੇ ਰਾਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਸਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਲੇਖ ਵੀ ਲਿਖੇ ਹੈ, ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਰਾਗ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਮੱਧਮ ਦੋ ਨਿਸ਼ਾਦ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸੀ ਰਾਗ ਸੇ ਇਸੀ ਠਾਠ ਸੇ 3 ਠਾਠ ਬਣਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਥਿਊਰੀ ਉਹਦੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਦਾਰਾ ਸਭਸੇ ਮਾਨ ਰਾਗ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਔਰ ਇਨਸੇ 3 ਠਾਠ ਬਣਤੇ, ਐਸਾ ਕੋਈ ਰਾਗ ਨਹੀਂ ਜਿਸਸੇ ਔਰ ਠਾਠ ਬਣਨ। ਜੋ ਜਾਣਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਬਤਾ ਦਿਆਂ ਕਿ ਮੱਧਮ ਤੀਵਰ ਹਟਾ ਦਿਓ ਤਾਂ 2 ਨਿਸ਼ਾਦਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਮੱਧਮ, ਇਹ ਬਣੇਗਾ ਖਮਾਜ ਠਾਠ। ਫਿਰ ਕੋਮਲ ਮੱਧਮ ਨਿਸ਼ਾਦ ਹਟਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਬਿਲਾਵਲ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਬਿਲਾਵਲ ਅਤੇ ਖਮਾਜ, ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਤੀਵਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਂ ਕੋਮਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹਾਂ ਤੀਵਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਲਿਆਣ ਠਾਠ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਇਸ ਜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਰਾਗ ਨੇ ਬਹੁਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ ਸੰਪੂਰਨ ਜਾਤੀ ਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਸੰਪੂਰਨ ਜਾਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਰਾਗ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਬਹੁਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪੁਰਾਤਨ ਸ਼ਬਦ ਰੀਤ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਭਾਵ ਲਗਭਗ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੂੰਦ ਕਹਾਂ ਚਰ ਤਿਆਗ ਚਾਤਰਕ ਮੀਨ ਰਹਿਤ ਨਾ ਘਰੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਰਹੇ ਮੀਨਾ ਮੀਨ ਦੀ, ਮੱਛੀ ਦੀ, ਅਤੇ ਚਾਤਰਕ ਪੰਛੀ ਦੀ, ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਰਣ ਦੀ, ਹਿਰਣ ਨੂੰ ਪਕੜਨੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਕਾਂਸੀ ਦੀ ਥਾਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਕੇ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਵਜਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਸਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਹਿਰਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਬੇਦ ਤੀਖਣ ਸਰੀ, ਯਾਨੀ ਤਿੱਖੇ ਤੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿੰਦਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਮਰਨੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਭਾਵ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਤਰੀ ਭਾਵ ਲਈਏ ਤਾਂ ਲਫਜੀ ਹੈ, ਹਿਰਣ 'ਤੇ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੀ ਮੱਛੀ 'ਤੇ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੀ ਪੰਛੀ 'ਤੇ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਭਾਵ ਨੂੰ ਪਕੜਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਐਸੀ ਲਗਨ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਦ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹਾਂ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਹਾਲਤ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ फिर कहांगा कल परसों कि असी तो हूँ बाणी का सत्कार करना भी घटा दिया है। इत्थे तक हालत है कि टेप चल रही है, रेडियो चल रहा है, तो गल्लां भी चल रही। 50-60 साल पहले कहिंदे सी भी बाणी दे वक्त कोई गल नहीं करनी, और रहतनामे च लिखिया ऐसा कि जो बाणी पढ़ दिया कोई गल करे तो कहिंदा वो गुरु दे पास बैठा भी नरकां च बैठा, ऐसा रहतनामे च लिखिया होया। तो असी गड्डी भी चला रहे हां ते रागियां दी टेप भी चल रही है ते गल्लां भी करी जा रहे हैं। ये तो हम देखते हैं, असी सब एक दूसरे कर रहे हैं। पहले ऐसी कि कोई रागी कोई बंदा अगर शब्द शुरू कर दे तो कहिंदा शब्द नूं पूरा करो, बिचों नहीं छड़ना। तो टेपां बजने बनाने या बेचने वाले ये सुनो जी, हुण ये सुनो। इस करके साड़ी ये हालत है कि इतनी महान कीमती वस्तु नूं असी एक बाजारू दा रूप दे दिता। और अपने हिंदुस्तान विच जाओ तो हर आदमी लाउड स्पीकर लगाई बैठा उपर, कई बारी तो आपस में टकराने हैं, यही नहीं पता लगता कि फड़ाले गुरुद्वारे तो की बोल रहा है तो दूजे तो की बोल रहा है। ये व्यापार कोई ऐसा रखता है कीमती चीज़ नो बाहर ऐसे दुनिया में? एदा मतलब सिर्फ ये समझा मैं कि असी गुरबाणी नो नहीं समझ रहे, ना इहदी महत्ता नो समझ रहे, सगों एक कण रस का एक हिस्सा बना लिया सी भी अच्छे आवाज़ वाले आदमियों नूं सुनो तो उन्होंने जो मंगते उन्होंने पैसे दे दो, बस ये तो अगे कुछ नहीं। ये दूसरा शब्द है ऐसी राग विच, पर पुराने शब्द रीत है। वैसे तो मैं इस हक विच हाँ कि बाणी याद करके गानी चाहिए है, पर क्योंकि मैं कीर्तनिया नहीं हाँ तो बाणी मैनू भुल भी गई, इतने तक भी आशा दुआर भी मैनू याद नहीं है। क्योंकि जेड़ा काम खास तौर पर बाणी जे नाल तुसी रोज़ गाओ या पढ़ो तो भुल जाएगी, इहदा रोज़ अभ्यास का काम है। संगीत का भी अभ्यास का काम है, बजाने का भी है, फिर भी मैनू मजबूरन देखना पड़ता, पर देखने के नाल सुरती कागर नहीं होंगी, इसलिए पुराने रागी देख के नहीं गाते सी और ना देख के गाण देंदे सी, संगत दे भी बंदे रोक देंगे भाई साहब जबानी गाओ, पर जब सारा ही कहानी थिएटर सारा ही बिगड़ा पड़ा ताना पीटा तो कौन किसनू कहे? पिछे एक संत जना कौन सी न्यूयॉर्क तो गया तो सब बालकों ने रखे हुए गुटके आसे दुआर से गा रहे और बेसुरे, मैं कम से कम इन्हों बाणी तो याद कराओ। ये हालत सारी चल रही है तो की रस बनेगा की बाणी में असं समझांगे? बाणी तो एक आत्मक खुराक है, इसके अंदर कोई लगन है कोई दर्द हो तो फिर बंदा इसकी महत्ता को समझ सकता है, नहीं तो बहुत मुश्किल है। दूसरा शब्द भी ये नाल ही मिलता जुलता है और एक तत्व बिल्कुल ये नाल एक जगह मिल रही है, एक रसना राम राम बखान दिन दिन दागे तुरते ना दिन दिन दागे रसना राम राम बखान रसना राम राम रसना राम राम बका त्याग चलना सगल संपत्ति त्याग चल सगल संपत्ति झूठे सर पर मान रसना राम राम बका चले ना सगल सम काल सर पर मान रचना राम राम भगवान रचना राम राम भगवान गुण गोपाल चार दिन रहन गुण गोपाल चार दिन भय कल मल हान गुण गोपाल उचार दिन रन गुण गोपाल उचार दिन भय कल मल हान रसना राम राम रसना राम राम बता गोपाल उचार दिन भय कल मल हान रसना राम राम बता रसना 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 राम राम बता रसना राम राम बता मितन मोह दुरंतिया सा मितन मोह दुरंतिया झूठे सर पर मान मितन मोह दुरंतिया सा मितन मोह पर मान रचना राम राम बता रचना राम राम बतान रचना राम राम बता गोपालू चार दिन भय कल मल रचना राम राम बता रचना राम राम बता सतपुरख अकाल मूरत सतपुरख अकाल मूरत सतपुरख अकाल मूरत हृदय धारो ध्यान सतपुरख अकाल मूरत सतपुरख अकाल मूरत सतपुरख अकाल मूरत हृदय धारो ध्यान नाम निधान लोभ नानक लाभ निधान लोभ नानक लाभ निधान अब न बर्त एह परवान बर्त एह परवान रचना राम राम बता रचना राम राम बता गोपाल उतार दिन भय कल मल हान रचना राम राम बता रचना राम राम भगवान
सतपुरख अकाल मूरत हृदय धारो ध्यान उन लफजी अर्थ यही है भी वो सत वाहेगुरु हमेशा रहने वाला शक्तिवान उसनों मन में ध्यान में रखो उन ध्यान में रखोगे तो जब ध्यान में असी रहांगे ये गली गल बहुत कठिन है फिर मनुख गलत कम नहीं करेगा क्योंकि हाजर नाजर जद समझोगे एदा मतलब कि अजे तक जो तक असी ये कम कर रहे हैं जिन्हों गुरु नानक गुरु गोबिंद सिंह दशा गुरां ने बार बार कहा भी सत नाल जुड़ो असत नो छड़ो छड़ने दा मतलब भी रोटी खाना या पहनना या सोना बंद कर दो सिर्फ यह भी उसनों इतना रखो भी ये सारे शरीर नो चलाने वाली एक चीज़ है बस असल जो है वो मनुखा जन्म नू अवस्था बदल जाती है जब उसी नू ब्रह्म ज्ञानी कहा है ब्रह्म ज्ञानी और कोई अलहदा किधरे उतरेगा नहीं। मनुख दे अंदर ही ब्रह्म दा ज्ञान होने नाल जिमें अग्नि है, अग्नि प्रगट नहीं है, लक्कड़ विच अग्नि है पर प्रगट नहीं। जब प्रगट हो जाए तो ज्ञान पैदा हो जाता। बस इसी तरह साढ़े अंदर भी वो रब की जोत तो है लेकिन प्रगट इस वास्ते नहीं कि वो दब रही है और गल्लां करके। इस वास्ते गुरुद्वारे आना, बाणी सुनना, बाणी पढ़ना, नितनेम करना, पढ़ते पढ़ते अवस्था नूं बदलिया जाएगा ता ही कुछ बात दा और आनंद दी कुछ अवस्था नेड़े आएगी ते सानू अपना मनुखा जन्म भी सफल नज़र आएगा। ते इत्थी समाप्ति, बाकी अगला प्रोग्राम फिर इतवार नूं होएगा। उस वक्त फिर मैं खास तौर ते चार छंद गुरु अर्जन देव जी दे हैं जिन्हों वक् वक् रागों में और वक् वक् तालों में सुनना मैं। तो जदों तक होएगा मैं सेवा कर रहा और अपनी भी सेवा खुद ही ले रहा क्योंकि मैं भी खुद अपना भी अभ्यास ही कर रहा इस तरह। तो इतनी समाप्ति। वाहगुरु जी का खालसा, वाहगुरु जी।